कल चर्चा कर रहे थे कि किस तरह श्रीमती राधा रानी अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही है उद्धव जी के सामने। तुम्हारा जय अन्य देश अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रजज ने कभू नहीं भाए। तो श्रीमती राधा रानी के जो भाव अब चैतन्य महाप्रभु प्रदर्शित कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रथ के सामने, जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण हैं, तो उनके सम्मुख ये भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तो तुम्हारा जे अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रजज ने कभू नहीं भाए। श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका जो अन्य देश में अर्थात ब्रज के अतिरिक्त दूसरे स्थानों में आप जो निवास करते हैं, तो वहां पर अन्य भक्तों का संग करते हैं, अन्य लोगों का संग करते हैं, और वहां पर आपका वेश भी भिन्न है, क्योंकि ब्रज में भगवान कृष्ण का गोप वेश है और मथुरा द्वारका में राजवेश। तो श्रीमती राधारण कह रही है कि ब्रजजन नहीं भाए, कि ब्रज लोगों को आपका ये वेश अच्छा नहीं लगता, आपका ये राजवेश ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान कृष्ण गोप वेश में ही बहुत सुंदर और आकर्षक लगते हैं। इसलिए श्रीमती राधारानी कह रहे हैं कि ब्रजजनों को आपके अन्य स्थानों में ब्रज को छोड़कर अन्य स्थान में निवास करना, अन्य लोगों का संग करना और अन्य प्रकार का वेश धारण करना ये अच्छा नहीं लगता। ब्रजभूमि छड़ित नारे तुमा ना देखिले मरे ब्रज जनेर की हवे उपाय। तो कोई प्रश्न कर सकता है, यदि श्रीमती राधारानी कृष्ण के विरह में इतनी व्याकुल है और ब्रजवासी जन कृष्ण के विरह में इतने व्याकुल हैं, तो ये लोग ब्रजभूमि छोड़कर मथुरा क्यों नहीं चले गए? मथुरा केवल ब्रजभूमि से वृंदावन से 10 किलोमीटर दूरी पर है, तो ये लोग चाहते तो जा सकते थे मथुरा, कृष्ण का दर्शन कर सकते थे, तो क्यों नहीं गए मथुरा में? तो राधारानी कह रहे हैं ब्रजभूमि छड़िते नारे तुमा ना देखिले मरे ब्रज जनेर की हवे उपाय। हम लोग ब्रज भूमि को त्याग नहीं सकते, श्रीमती राधारानी कह रही है। क्यों त्याग नहीं सकते? क्योंकि ब्रजभूमि का जो माधुर्य और सौंदर्य ये दूसरे स्थानों पर प्राप्त नहीं है। दूसरे स्थानों पर कृष्ण के साथ पात्र मंत्री, उनके पार्षद वर्ग और राज कर्मचारी, बहुत भीड़ लगी रहती है, किंतु जब कृष्ण वृंदावन में होते तो उस समय वो अकेले गोचारण करने के लिए घर से निकल जाते वन में। यद्यपि गोपाल बालकों के साथ भगवान कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते थे, फिर भी कुछ न कुछ बहाना बनाकर अकेले निकल जाते थे गोपियों से और श्रीमती राधारानी से मिलने के लिए। और इस प्रकार का अवसर मथुरा में प्राप्त नहीं होगा या द्वारका में भी प्राप्त नहीं होगा। गोपियां भगवान कृष्ण के साथ एकांत में मिल नहीं सकती, इसलिए मथुरा जाकर उनको क्या लाभ मिलेगा? और ब्रज में भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के साथ जो व्यवहार करते हैं और ब्रजवासी जन उनके साथ जो प्रेम व्यवहार करते हैं, ये मथुरा में उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि मथुरावासी जन ये नगर में शहर में निवास करते हैं और ब्रजवासियों के प्रेम को ये नगरवासी मथुरा जन कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि उनका भाव ही अलग है मथुरा में। मथुरा में भगवान सारे लोग कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं, यहां तक कि वसुदेव और देवकी भी कृष्ण को भगवान के रूप में जानती है। जब भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए थे कंस की बंदीशाला में, तो पहले तो वो चतुर्भुज रूप में आविर्भूत हुए थे उनके सामने, वसुदेव और देवकी के सामने, और उनके अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने शिष्य रूप ग्रहण किया था। वो देवकी के हृदय से चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे, यही कृष्ण का जन्म है। तो वसुदेव देवकी को ये पता था कि ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान है। जब भगवान कृष्ण ब्रजभूमि से मथुरा आए, कंस का वध किया सभी के सामने, मथुरावासियों के सामने, और कुछ ब्रजवासी भी वहां उपस्थित थे जो साथ में गए थे, नंद महाराज भी उपस्थित थे, क्योंकि नंद महाराज भी साथ में गए थे, गोपाल बालकगण भी उपस्थित थे। तो सभी ने देखा कि किस प्रकार कृष्ण और बलराम, जबकि किशोर वयस्क के थे, किशोर आयु के थे, उनकी आयु समय कितने वर्ष की थी, 10 वर्ष 8 महीना। किशोर अवस्था में प्रवेश किए थे, 10 वर्ष के बाद किशोर अवस्था आता, तो किशोर अवस्था में प्रवेश किए हुए थे, उनकी आयु अधिक नहीं थी, और उन्होंने चाणूर मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया सभी के सामने। और कंस जो प्रबल पराक्रमी था, कंस में 10,000 हाथी के बल थे, इसलिए कंस को पराजित करना ये संभव नहीं था। और कंस के पास जितने भी असुर रहते थे, तृणावर्त, अघासुर, पुतना, जितने असुर हैं, इन सभी को कंस ने युद्ध में पराजित करके अपना वशीभूत किया था, अपने अधीन में रखा था। ये असुर भी बहुत शक्तिशाली थे, किंतु कंस की शक्ति के सामने ये पराहत हुए। तो कंस को भगवान ने कैसे मारा, क्योंकि कंस तो उनसे सिंहासन पर बैठा था, देख रहा था, और उसने आयोजित किया था ये रंगशाला कि मल्ल युद्ध के माध्यम से कृष्ण बलराम का वध करना, यही उसका उद्देश्य था। तो भगवान कृष्ण मल्लों का वध करने के पश्चात सीधे उठ गए कंस जहां बैठा था उनसे सिंहासन पर, और कृष्ण को देखकर कंस तो भयभीत हो गया, क्योंकि इतने दिनों से कंस इस समय की प्रतीक्षा कर रहा था। तो अत्यंत भयभीत होकर उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली कृष्ण को आक्रमण करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने सहज रूप से सरलता पूर्वक कंस को पकड़ लिया और उसको धकेल दिया नीचे, कंस ऊपर से आकर नीचे गिरा, और सभी लोग देख रहे हैं, सभी के सामने, मथुरावासियों के सामने, और भगवान कृष्ण उस ऊंचे स्थान से कंस के ऊपर ही कूदे। तब तक कंस शरीर त्याग दिया था, किंतु मथुरा वासियों को विश्वास नहीं होगा कि इतना शक्तिशाली कंस मर गया ऊपर से नीचे गिर करके। तो कंस ने कृष्ण ने कंस को पकड़ा और घसीट करके चारों तरफ लेके मथुरा वासियों को दिखाया कि अब ये मरा हुआ है, ये अब जीवित नहीं है। तब सभी को विश्वास हुआ कि कंस मर गया, नहीं तो किसी को विश्वास नहीं होता था कि कंस को कोई मार सकता है। और वसुदेव देव की इस दृश्य को देख रहे थे तो उनको स्मरण होया कि ये कृष्ण ये साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान है। तो कंस वध के पश्चात जब कृष्ण गए बलराम जी के साथ माता पिता से मिलने के लिए, तो वसुदेव देवकी कृष्ण के ऐश्वर्य से इतने प्रभावित थे कि कृष्ण को देखकर उनमें जो वात्सल्य प्रेम का उदय होना चाहिए माता पिता के रूप में, कि इतने वर्षों के पश्चात अपने पुत्रों से मिल रहे हैं माता देवकी और वसुदेव, क्योंकि जन्म के साथ साथ उन्होंने नंद गृह में रख दिया था, कृष्ण को रख कर आए थे। तभी से वसुदेव देवकी ने कृष्ण का दर्शन नहीं किया था। अब पहली बार कंस वध के समय ही दर्शन हुआ, अब कंस वध के पश्चात वो आ रहे हैं मिलने के लिए माता पिता से, तो माता पिता तो प्रेम पूर्वक आगे जाकर उनको गले लगाना चाहिए, यही वात्सल्य प्रेम का प्रतीक है। किंतु वसुदेव देवकी आगे नहीं जा रहे, हाथ जोड़कर खड़े हैं उनको भगवान मानकर, ये कृष्ण स्वयं भगवान। तो उनमें वात्सल्य भाव का उदय नहीं हो रहा है, ऐश्वर्य भाव का उदय हुआ है, ये कृष्ण भगवान है ये भाव उदय हुआ है। तो भगवान कृष्ण आ रहे थे माता पिता से मिलने के लिए, उनके आलिंगन पास में आबद्ध होने के लिए, क्यों देख रहे हैं कि माता पिता हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि इनमें ऐश्वर्य भाव का उदय हुआ है, ये मुझे भगवान मान रहे हैं, पुत्र नहीं मान रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने इनको योग माया के प्रभाव में डाल दिया और तुरंत वो भूल गए कि कृष्ण भगवान है योग माया के प्रभाव में। तब जाकर उनमें वात्सल्य भाव का उदय हुआ और उन्होंने आगे जाकर कृष्ण का आलिंगन किया, कृष्ण बलराम। तो मथुरावासी जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, किंतु ब्रजवासी जानते नहीं है कि कृष्ण भगवान है। यद्यपि भगवान कृष्ण कई बार अपने ऐश्वर्य ब्रज में भी प्रदर्शित किए हैं, किंतु फिर भी ब्रजवासियों को विश्वास नहीं है कि कृष्ण भगवान हो सकते हैं। माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, किंतु माता यशोदा सोच रहे कि ये मेरे चक्षु का भ्रम है, कृष्ण मेरा पुत्र कभी भगवान नहीं हो सकता। तो ये प्रेम का सर्वोच्च प्रेम का प्रभाव है कि भगवान अपने ऐश्वर्य प्रदर्शित करने पर भी ब्रजवासियों को विश्वास नहीं होता कि ये भगवान हो सकता। तो माता यशोदा नंद महाराज कृष्ण को अपना पुत्र समझते हैं, ब्रजवासी जन कृष्ण को अपना आदमी समझते हैं, अपने घर का आदमी। इसलिए अभी भी वो भाव हैं ब्रज में, हर घर में आप जाएंगे ब्रजवासी रोटी खाते हैं। तो पहली रोटी जो बनाएंगे पहले कृष्ण के लिए रख देंगे, ये उनका नियम है। बाहर कितने लोग भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, केवल भक्तों को छोड़कर और कोई शायद नहीं खाते होंगे भगवान को भोग लगाकर। किंतु ब्रज में हम देखते हैं कि वो हमारे जैसा भक्त नहीं है, किंतु उनमें भगवान कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। इसलिए पहली रोटी बनाएंगे तो पहले भगवान के लिए रखेंगे, उनको भोग लगाने के लिए, और दूसरी रोटी गौओं के लिए, गौओं की सेवा के लिए। तीसरी रोटी कोई अतिथि के लिए, कोई अतिथि घर पर आता है, कोई ब्रजवासी नहीं लौटाता है बिना कुछ दिए, ये नियम है ब्रज का। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं दम्भ पूर्वक कि ब्रज में यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। और भगवान कहते हैं जो मांगने नहीं जाता है ब्रजवासियों के घर, जो भक्त, उसके लिए मैं स्वयं लेकर आता हूँ भोजन। माधवेंद्रपुरी को ऐसा कहा था भगवान। तो ब्रजवासी लोग तीसरी रोटी अतिथियों के लिए, साधुओं के लिए रखते हैं, फिर चौथी रोटी अपने लिए बनाते हैं, ये उनका नियम है। तो इसलिए ब्रजवासियों का जो प्रेम है ये स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो इसलिए श्रीमती राधारानी कह रही है ब्रजभूमि छाड़ीते नारी, इसलिए ब्रजवासी लोग ब्रजभूमि को त्याग कर अन्यत्र जाना नहीं चाहते। एक ब्रजवासी हमें कह रहे थे, ब्रजवासी ब्राह्मण थे, वो सदा सर्वदा यही मुझे कहते थे कि ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, मैं ब्रजभूमि को त्याग करके बैकुंठ जाना भी नहीं चाहता। उनमें ब्रज के प्रति इतना लगाव है क्योंकि ब्रजभूमि का माधुर्य कुछ अलग है, बैकुंठ में भी ये माधुर्य उपलब्ध नहीं है, केवल गोलोक वृंदावन में ये माधुर्य उपलब्ध है। ब्रजभूमि और गोलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये कहना यथार्थ है कि ब्रज को त्याग करके बैकुंठ भी ब्रजवासी जाना नहीं चाहते। मथुरा क्या है, मथुरा तो एक बैकुंठ के ऊपर है, फिर भी बैकुंठ का भाव है। मथुरा द्वारका में कृष्ण भगवान, यद्यपि बैकुंठ में भगवान विष्णु की पूजा होती है, किंतु द्वारका और मथुरा में वासुदेव कृष्ण वहां उपस्थित है, किंतु फिर भी वहां के निवासी उनको भगवान के रूप में जानते हैं। किंतु ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ब्रजभूमि को त्याग करके एक पग भी अन्यत्र नहीं जाते, ब्रज में ही निवास करते हैं सदा सर्वदा। तो आप कहेंगे तो हमने तो सुना है कि कृष्ण बलराम को लाने के लिए अक्रूर जी गए थे ब्रज में और मथुरा लेकर आए, तो कृष्ण बलराम कैसे ब्रजभूमि का त्याग नहीं करते। तो बाह्य रूप से यद्यपि हम देखते हैं कि कृष्ण बलराम ब्रजभूमि को त्याग कर मथुरा आ गए, किंतु जो कृष्ण बलराम मथुरा आए वो वासुदेव कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ब्रजभूमि में ही रह गए। तो कहाँ रहे उसके बाद तो वो दिखाई नहीं पड़े, कृष्ण बलराम को किसी ने देखा नहीं ब्रजभूमि में, तो कहाँ गए कृष्ण बलराम यदि वृंदावन में रहते थे। तो भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के हृदय में प्रवेश कर गए, जिससे सदा सर्वदा कृष्ण का विरह, बाह्य विरह सहन करते हुए भी ब्रजवासीगण अंतर में कृष्ण से मिल रहे थे। तो कृष्ण से बाह्य रूप से विरह है और अंतर से मिलन है, यही ब्रजवासियों का भाव है। और इसलिए श्रीमती राधारानी कहती है कि ब्रज भूमि छाड़ी तेनार, कि हम लोग ब्रज भूमि को छोड़ नहीं सकते। और तुमा ना देखिले मारे, और आपके दर्शन बिना हमारे लिए जीवित रहना भी कष्ट साध्य, हम जीवित नहीं रह सकते आपके दर्शन के बिना। ब्रजे जनेर की हवे उपाय, तो हे कृष्ण आप ही बताइए, यदि हम ब्रजभूमि छोड़ नहीं सकती और आपके दर्शन के बिना जीवन धारण नहीं कर सकती, तो आप ही बताइए हमारे लिए क्या उपाय होना चाहिए। (Clears throat) तुम्हें ब्रजेर जीवन ब्रजराजेर प्राणधन, तुम्हें सकल ब्रजेर संपद। तो हे कृष्ण, आप सारे ब्रजवासियों के जीवन है, प्राण है। आपके बिना ब्रजवासियों का जीवन धारण करना असंभव है। और विशेष रूप से नंद महाराज जो आपके पिता हैं, उनके तो आप प्राण धन है, प्राण संपत्ति है। प्राण व्यक्ति की बहुत बड़ी संपत्ति होती है। किसका प्राण नहीं रहेगा तो व्यक्ति मृत कहा जाएगा। तो कृष्ण के बिना ब्रजराज नंद महाराज का जीवन धारण करना ये भी असंभव था। तुम्हें सकल ब्रजर संपत, और आप ही ब्रजवासियों की संपत्ति है। आपके बिना ये ब्रज संपत्ति विहीन है, अर्थात ब्रज उजड़ा मैंने ब्रज का जो गौरव या माधुर्य वो लुप्त है। आपके बिना ब्रज का माधुर्य लुप्त है। कृपार्थ तुम्हार मन आशी जियाओ ब्रजजन, ब्रजे उदय कराओ निज पद। और आप कृपामय हैं, दीन बंधु हैं, दयार्द नाथ है। आपका हृदय दया से परिपूर्ण है, दया से आर्द्र है, दया से पिघल जाता है। आप दूसरों का कष्ट नहीं देख सकते। इसलिए राधा रानी का एक प्रिय उक्ति है, अई दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्यसे। माधवेन्द्रपुरी राधारानी के इस भाव को ग्रहण करते हुए अंतिम समय में इस श्लोक को बार बार गा रहे थे। अई दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्यसे, हृदयं तद अलोक कातरम दैत भ्रम्यति किं करोमि हम। ये राधारानी के भाव थे। तो राधारानी कृष्ण को दयार्द नाथ के रूप में संबोधित करती है, दीन दयार्द नाथ। जो दीन दुखी है संसार में, उसी व्यक्ति को दीन दुखी माना जाता है जिसके पास धन नहीं है। जो गरीब है उसको दीन दुखी कहते हैं। किंतु वस्तुतः वही दीन है, दुखी है, जिसके पास कृष्ण नहीं है। क्योंकि कृष्ण ही सारी संपत्ति के आधार है, लक्ष्मीपति है। यदि किसके पास कृष्ण है तो उसके पास सब कुछ है, सारे धन संपत्ति सब कुछ है। क्योंकि लक्ष्मी देवी वहां निवास करेगी यदि कृष्ण किसी के पास है। यदि कृष्ण नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। वही वस्तुतः दीन है। तो श्रीमती राधारानी कहती हैं कि दीन दयार्द नाथ, हे कृष्ण आप दीनों पर, दीन दुखियों पर आप कृपा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनकी अवस्था या कष्ट को देखकर आपका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। तो इसलिए श्रीमती राधारानी कहते हैं कि हम सब आपके विरह में दीन है। इसलिए जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में गाते हैं, श्रीमती राधारानी कहती है तब विरह अति दीना। तो श्रीमती राधारानी कृष्ण से कहती है, कृष्ण आपके विरह में हम दीन दुखी बन गए। तो आशी जियाओ ब्रजजन। तो इसलिए हे कृष्ण, ये ब्रजजनों के दुख को देखकर आप दीन दयार्द नाथ है, तो आप कृपा करके अब ब्रज में आइए और ब्रजवासियों को जीवित कीजिए। ये सब मरने वाले हैं, मरने जा रहे हैं, किसी भी समय अपने प्राण को त्याग सकते हैं, इसलिए उनको जीवित करने के लिए एकमात्र उपाय है आपका संदेश उद्धव के हाथ भेजना नहीं है। आपका संदेश हमें जीवित नहीं रख सकता। आपका आपका यहाँ आना ये ब्रजवासियों को जीवित करेगा। आपके बिना कोई भी ब्रजवासी जीवित नहीं रहेगा। ब्रजे उदय कराओ निज पद, आप साक्षात इस ब्रज में आकर अपने चरण कमल का उदय कीजिए, अर्थात ब्रज भूमि में अपने चरण कमलों को स्थापन कीजिए। ब्रजवासी आपके चरण कमलों को प्राप्त होकर पुनः जीवित हो उठेंगे, पुनः जीवन को प्राप्त होंगे जो मृत प्राय अवस्था में पड़े हुए हैं। सुनिया राधिका बानी, ब्रज प्रेम मने जानी, भावे व्याकुलित देह मन, ब्रज लोकेर प्रेम सुनी, आपना के ऋणी मानी, करे कृष्ण तारे आश्वासन। तो उद्धव जी ने जाके बताया भगवान कृष्ण को कि कैसे ब्रजवासी लोग उनके विरह में तड़पते रहते हैं रात दिन, किस प्रकार कष्ट में है और किसी भी समय अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी की उक्ति और उनके ब्रजवासियों के प्रेम को जानकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। मथुरा में रहते हुए भी वो व्याकुल हो उठे और अपने को ऋणी मान रहे हैं भगवान कृष्ण कि ब्रजवासियों का मेरे प्रति इतना प्रेम है और मेरे लिए इन लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया है, विशेष रूप से गोपियां और सारे ब्रजवासी, तो यहां तक कि खाना पीना भी त्याग दिए थे। जब कृष्ण ब्रजभूमि में लौट कर नहीं आए, मथुरा में रह गए कंस वध के पश्चात, तो सारे किसी भी ब्रजवासी के घर चूल्हा नहीं जल रहा था, कोई भोजन प्रस्तुत नहीं हो रहा था, खाना पीना सब छोड़ दिए थे और कृष्ण के विरह में रात दिन रो रहे थे। ये उनके प्रेम भाव है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रजवासियों के प्रेम का मैं ऋणी बन गया। ऐसा प्रेम सारे संसार में विरल है, कहीं दृष्टिगत नहीं होता है ब्रजवासियों के प्रेम के समान, क्योंकि दूसरे स्थानों पर लोग भगवान को कृष्ण के रूप में मानते हैं, किंतु ब्रजवासी तो कृष्ण को अपना पुत्र, अपने प्रेमी, अपना सखा यही मानते थे। तो भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं, प्राण प्रिय सुन मोरो यही सत्य वचन। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं श्रीमती राधारानी से, यह प्राण प्रिय मैं जो वचन बोल रहा हूं इसको सत्य मानकर चलो, मैं सत्य वचन बोल रहा हूं। तो मां सवार स्मरणे झुरो मुई रात्रि देने, यद्यपि मैं मथुरा में हूं और तुम लोग सोच रही हो कि मैं मथुरा में आनंद में हूं कंस वध के पश्चात, यद्यपि भगवान कृष्ण स्वयं राजा नहीं बने थे, उग्रसेन जी को राजा बना दिया था, किंतु उग्रसेन जी भगवान कृष्ण को पूछे बिना कुछ नहीं करते थे। तो वस्तुतः भगवान कृष्ण ही सबका सब कार्य देखते थे और गोपियां कभी कभी उलाहना देती हैं कि अब तो आप मथुरा में हैं, मथुरा रमणियों के साथ आनंद में हैं, हम लोगों को भूल गए हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुमा सवार स्मरण झुरो मुई रात्रि दिन है कि है गोपियों, तुम लोगों का स्मरण मैं रात दिन कर रहा, मैं तुम लोगों को भूल नहीं गया। तुम लोग जो सोचती हो कि मैं तुम लोगों को भूल गया हूं, मैं रात दिन तुम लोगों का स्मरण करता रहता हूं। मोरा दुख ना जाने कोनो जान, और मेरे हृदय में तुम लोगों के विरह से जो दुख उत्पन्न हुआ है उस दुख को दूसरा कोई नहीं समझ सकता। भगवान कृष्ण इस प्रकार की स्थिति में थे मथुरा में, किसके सामने अपना दुख व्यक्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उनको मथुरा के अधीश्वर के रूप में मानते हैं। तो भगवान कृष्ण किसके सामने जाए अपना दुख बताने के लिए। कभी कभी रात्रि के अंधकार में भगवान सोने के लिए जाते हैं शयन भवन में, किंतु सोते नहीं, रात भर ब्रजवासियों के प्रेम का स्मरण करते हुए स्वयं रोते रहते हैं। उनकी शया उनके अश्रु से भीग जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण मथुरा में रात्रि यापन करते थे। तो कह रहे हैं कि मोरो दुख ना जाने कोनो जान, कृष्ण किसको नहीं बोल सकते इस दुख को, इसलिए कहते हैं कि मेरे दुख को दूसरा कोई नहीं जानता। उनके उनके अश्रु से सजा भीग जाती है, फिर भी कृष्ण किसी को नहीं कहते हैं अपने हृदय की बात। ब्रजवासी जत जन माता पिता सखागण सबे है मोरो प्राण सम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी ब्रजवासी जन हैं, मेरे माता पिता हैं, सखागण हैं और तुम गोपियां हैं, तुम सब मेरे प्राण के समान है। जिस प्रकार प्राण के बिना किसी व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं है, तो भगवान कृष्ण जब ब्रजवासियों को अपना अपना प्राण समझ रहे हैं तो कहते हैं तुम लोगों के बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। तार मध्य गोपीगण साक्षात मोरो जीवन, तुम्ही मोर जीवनेर जीवन, और ब्रजवासियों के बीच तुम जो गोपीगण हैं, तुम लोग तो साक्षात मेरे प्राण हैं। और तुम लोग मेरे जीवन सदृश हैं, सारे ब्रजवासी मेरे प्राण हैं और उनमें से तुम लोग मेरे प्राणों के भी प्राण हैं। इतना महत्व प्रदान कर रहे हैं गोपियों को। तोमा सवार प्रेम रसे आमा के करिल वसे आमी तुम्हार अधीन केवल। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम लोगों का जो स्वच्छ निर्मल प्रेम है मेरे प्रति, उसमें थोड़ा सा भी स्वार्थ नहीं है। ये निस्वार्थ पर जो प्रेम है, उस प्रेम से हम बसीभूत हो गए, तुम्हारे प्रेम के में हम बसीभूत हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण को और कोई बसीभूत नहीं कर सकता। केवल भगवान भक्तों के प्रेम से बसीभूत होते हैं। भक्ति वस माधव, भगवान भक्ति के प्रेम के वशीभूत है। आमी तुम्हारे अधीन केवल, और वशीभूत होने का अर्थ क्या है कि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, इसलिए भगवान को कहना पड़ता है कि अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र ही बद्ध, कि ये ब्राह्मण मैं भक्तों का अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जो परम स्वतंत्र प्रभु हैं वो कह रहे हैं कि मैं भक्तों का अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं। क्योंकि उनका हृदय भक्तों ने अधिकार कर लिया है, तो भगवान भक्तों को अपने हृदय में धारण करते हैं, इसलिए उनके अधीन हो गए। भक्तजन जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि शुद्ध भक्त जो बोलेंगे भगवान को, भगवान सुनेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम जितना चाहें भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे, किंतु जब तक भगवान के शुद्ध भक्त हमारे लिए भगवान से नहीं कहेंगे हम पर कृपा करने के लिए, तो भगवान हमारी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए भगवान के भक्तों का आश्रय, गुरुदेव का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि गुरुदेव या जो शुद्ध भक्त हैं ये भगवान के प्रिय होते हैं और भगवान उनके वशीभूत होते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अमी तुम्हार अधीन केवल, तो हम तुम्हारे अधीन है, श्रीमती राधारानी से कह रहे हैं। इसलिए भक्तजन गुरु के माध्यम से श्रीमती राधारानी की शरण में जाते हैं, और राधारानी जब कृष्ण से कहेगी ये भक्त बहुत अच्छा है आप इसकी सेवा ग्रहण कीजिए, तो कृष्ण अवश्य ग्रहण करेंगे। तो वृंदावन में इसलिए सभी लोग राधे राधे कहते हैं, क्योंकि राधारानी के आश्रय में, और राधारानी भगवान कृष्ण के अति प्रिय। तमा सवार प्रेम रसे आमा के करिल वसे, आमी तुम्हार अधीन केवल, तमा सवा छाड़ाया आमा दूर देश लया राखी आछे दुर्दैव प्रभाव। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि मैं तुम लोगों के प्रेम के अधीन हूं, फिर भी तुम लोगों से दूर अब मैं यहां निवास कर रहा हूं, ये हमारा दुर्दैव है। विधाता ने हमें ऐसा रखा है तुम लोगों से अलग करके, तो विधाता की जो इच्छा है हम लोगों को मानना पड़ेगा, हम उसको नकार नहीं सकते, जबकि स्वयं विधाता बोल रहे हैं इस बात को। क्योंकि विधाता कौन है? स्वयं कृष्ण है, और स्वयं कृष्ण ही बात बोल रहे हैं कि विधाता ने ऐसा किया है। हमें ये विरह भाव का उदय करने के लिए विच्छेद किया, हमको दूर देश में लाकर डाल दिया। प्रिया प्रिया संग हिना, प्रिया प्रिया संग बिना नहीं जिए, ये सत्य प्रमाण। तो वस्तुतः जो प्रिय है, जिसका वास्तविक प्रेम है, और प्रेम शब्द का जब हम व्यवहार करते हैं हमें हर समय ये स्मरण रखना चाहिए कि आत्मेंद्रिय प्रतिवंशा ये प्रेम नहीं है, ये काम है। कृष्णेन्द्रिय प्रतिवंशा धरे प्रेमना, ये कृष्ण के इंद्रिय प्रीति के लिए जब हम कार्य करते हैं वही वस्तुतः प्रेम है। तो ये जो प्रिय और प्रिया, प्रेमी और प्रेमिका, ये दोनों में ये भाव जहां स्वच्छ प्रेम है, तो यहां ये देखा जाता है कि यदि प्रेमी प्रेमिका के संग के बिना, या प्रेमिका प्रेमी के संग के बिना रहना उसके लिए असंभव होता है। जो सच्चा प्रेमी है वो प्रेमिका के संग के बिना रह नहीं सकता, वो जीवन विसर्जन कर देता है। मोर दशा सोने जेबे जबे तार यही दशा हवे यही भय दुहे राखे प्राण। तो प्रेमी और प्रेमिका में ये भाव रहता है, दोनों अपने अपने भावों को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि प्रेमी सोचता है कि मैं प्रेमिका के बिना मुझे जो कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, यदि मैं मेरे दुख को प्रेमिका को बता दूं तो प्रेमिका को भी यही दशा होगी, इसलिए प्रेमी नहीं बताता है प्रेमिका को, और प्रेमिका भी वही सोचती है कि मेरी जो दशा है यदि मैं अपने प्रेमी को बताऊं तो उनको भी यही दशा प्राप्त हो जाएगी। तो अर्थात प्रेमी को प्रेमिका कष्ट देना नहीं चाहती है और प्रेमी भी प्रेमिका को कष्ट देना नहीं चाहती, ये प्रेम का लक्षण है, शुद्ध प्रेम का लक्षण। यही भय दुहे रखे प्राण। तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों सोचते हैं कि मेरी दशा सुनकर मेरी प्रेमिका प्राण त्याग देगी, और प्रेमिका सोचती है मेरी दशा सुनकर प्रेमी प्राण त्याग देंगे, इसलिए दोनों जीवित रहते हैं, दोनों अपनी दशा को नहीं बताते हैं कि परस्पर को। सही सती प्रेमवती प्रेमवान सही पति वियोग जे बांछे प्रिय हिते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही स्त्री सती है और प्रेमवती है, उसका सच्चा प्रेम है जो अपने प्रिय पति जो प्रेमवान है उसके वियोग में रहकर भी वह स्त्री प्रेमी का हित चाहती है। तो वही स्त्री जो प्रेमवती सती है वो प्रेमी पति के विरह में फिर भी पति का हित ही चाहती है, कोई अमंगल कामना नहीं करती। नागणे आपन दुख बांछे प्रिय जन सुख सही दुई मिले अचिरात। और इस प्रकार जो स्त्री अपने दुख को दुख नहीं मानती है और प्रियजन का प्रियजन के सुख की कामना करती है, ऐसे प्रेमिका और प्रेमी, ऐसे स्त्री और स्वामी अति शीघ्र परस्पर को अति शीघ्र उनकी भेंट होती है, ये परस्पर को मिलते हैं। राखिते तुम्हार जीवन से भी आमी नारायण तार सकते आसी नीति नीति तुमा सने क्रीड़ा करी पुनः जाई जदुपुरी ताहा तुम्हें मानह मोर स्फूर्ति। तो भगवान कृष्ण बता देते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में जब विरह दशा अति प्रबल हो जाती है उस समय राधा रानी की स्फूर्ति होती है, और उस स्फूर्ति में राधारानी देखते हैं कि कृष्ण आए हुए हैं ब्रज में और उनके साथ लीला कर रहे हैं, और उससे श्रीमती राधारानी आनंद प्राप्त करती है। किंतु जब वो स्फूर्ति दूर हो जाती है फिर वो सोचने लगती कि कृष्ण कैसे आएंगे यहाँ, वो तो मथुरा में है, तो ये सब स्वप्न है, ये सत्य नहीं है, इस प्रकार सोचती है। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं सच्ची माता जब श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में थे, सच्ची माता तरह तरह के व्यंजन बनाती थी, और भगवान को भोग लगाती थी घर पर और सोचती थी कि यदि मेरा निमाई होता तो ये सारे व्यंजन आज भोजन करता। ये सोच करके तो सारे व्यंजनों को निमाई के लिए रख देती है और स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर भोजन करते हैं, सची माता देखती है और सारे पात्र शून्य हो जाता है। और जब सची माता की स्फूर्ति टूट जाती है और वो देखती है कि सारे पात्र खाली हैं, तो वो सोचने लगती है कि मेरा निमाई तो नीलाचल में है, वो कैसे यहां आ सकता है, ये सत्य नहीं है। जबकि वो देखती है कि निमाई आकर भोजन कर रहा है, पात्र खाली हो गया है स्फूर्ति में, किंतु जब स्फूर्ति टूट जाती है वो सोचती है कि वो तो नीलाचल में है, वो कैसे आकर भोजन कर सकता है, और ये पात्र सब खाली हैं, इसका अर्थ है कि मैं भूल गई हूं इस पात्र में भगवान का प्रसाद रखने के लिए मेरे निमाई के लिए, इस प्रकार सोचती है स्फूर्ति में। तो उसी प्रकार की स्फूर्ति श्रीमती राधारानी में भी होती है। तो भगवान कृष्ण राधारानी को कह रहे हैं कि मैं स्फूर्ति में तुम्हारे पास जाता हूं, तुम्हारे साथ लीला करता हूं, किंतु तुम इसको सत्य नहीं मानती, तुम इसको स्वप्न के रूप में ज्ञान करती हो, किंतु सचमुच मैं तुम्हारे पास जाता हूं और लीला करता हूं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी संदेश भेजा था सची माता के पास कि माता से कहना, उस दिन उन्होंने मुझे खिलाने के लिए भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगाया था और मुझे प्रसाद दिया था, मैं जाकर खाया था, मैंने खाया था। सची माता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु जाते हैं भोजन करने के लिए उनके घर। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण श्रीमती राधारानी से कहते हैं कि मैं आता हूं ब्रज में और तुम्हारे साथ लीला करता हूं, तुम उसको स्फूर्ति मानते हो, विश्वास नहीं करती हो कि मैं आता हूं ब्रज में। तो कृष्ण कहते हैं कि राखी ते तुम्हार जीवन आमी से भी नारायण। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम लोगों के जीवन की रक्षा के लिए मैं यहां मथुरा में नारायण की सेवा करता स्वयं आदि नारायण कह रहे नारायण की सेवा करता और तार सकते आसी नीति नीति। तो कोई कहेगा कृष्ण तो मथुरा में, वो सचमुच कैसे आएंगे वृंदावन में? तो कृष्ण कह रहे हैं मैं नारायण की जो पूजा करता हूं ना, नारायण की शक्ति से मैं आ जाता हूं ब्रजभूमि में, प्रतिदिन आता हूं। कहते हैं तुम्हा सने क्रीड़ा करी पुनः जाई जदुपुरी, ताहा तुम्ही माना मोर स्फूर्ति। और तुम्हारे साथ मैं क्रीड़ा करता हूं, विहार करता हूं और फिर यदुपुरी चला आता हूं, मथुरा चला आता, किंतु तुम उसको स्फूर्ति मानती हो। मोर भाग्य मो विषय तुम्हारा जे प्रेम है, सही प्रेम परम प्रभाव, लुकाया अमाने संग कराए तमासन प्रकट है अनिवेशत्व। तो भगवान कृष्ण श्रीमती राधारानी को आश्वासन दे रहे हैं, कहते हैं कि हमारे संबंध में तुम्हारा जो प्रेम है, ये प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, प्रबल प्रेम है, ऐसा प्रेम और किसी में दृष्टिगत नहीं होता, यहां तक कि और किसी गोपी में भी दृष्टिगत नहीं होता, श्रीमती राधारानी में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इसलिए श्रीमती राधारानी को महाभाव स्वरूपा कहा गया, महाभावमयी है श्रीमती राधारानी, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। लुकाया अमाने संग कराए तमाशन। तो तुम्हारा जो प्रबल प्रेम है, वो प्रेम क्या करता है, मुझे छिपा करके मथुरा से तुम्हारे पास ले आता है। तुम्हारा संग करने देता है। यदि तुम्हारा प्रेम इतना प्रबल है कि और छिपा करके मुझे ब्रजभूमि में ले जाता है मथुरा से, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि तुम्हारा प्रेम अति शीघ्र मुझे तुम्हारे पास प्रकट रूप से ले आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्यादा वेरा विपक्ष जता दुष्ट कंस पक्ष तहामी कैलुम सबक्ष आछे दुई चारि जन तहा मारी वृंदावन आईला मामी जानी हनिश्चय। तो भगवान कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं श्रीमती राधारानी को कि जितने मथुरा में जितने जदुवंश के विपक्ष में थे अर्थात शत्रु थे, तो उन लोगों को हमने वध कर दिया है। यदुवंश के शत्रुओं का हमने वध कर दिया है जो कंस के पक्ष में थे और यदुवंश के शत्रु थे, उनका भी हमने वध कर दिया, कंस का वध कर दिया है। और अब दो चार जन बाकी है तो इन लोगों को मैं अति शीघ्र मार कर तुम ये सोचो कि हम आ गए ब्रज में और इसमें विलंब नहीं होगा, ये आश्वासन दे रहे कि हम अति शीघ्र ब्रज में तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, और दो चार बाकी हैं उनको मारकर ही हम आ जाएंगे। सही शत्रुगण हैते ब्रज जन राखिते रही राज्य उदासीन है। तो भगवान कृष्ण अब असली कारण बता रहे हैं क्यों मथुरा में है, क्यों ब्रज में नहीं आए, जब गोपियां और ब्रजवासी इतने व्याकुल हैं कृष्ण के विरह में, तो कृष्ण आकर ब्रज में उनको सांत्वना देकर फिर चले जाते अगर यदि कोई काम है, किंतु वो क्यों नहीं आ रहे हैं ब्रज में इसका कारण बता रहे हैं कि यदि वो जानते हैं कि ब्रजवासी और गोपीजन उनके विरह में प्राण त्यागने के लिए भी प्रस्तुत हैं, फिर भी कृष्ण इस उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं, तो कहते हैं सही शत्रुगण हैते ब्रज जन राखिते, कि हम ब्रज में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यदि मैं ब्रज में चले जाएंगे तो ये जो शत्रु हमारे हैं यदुवंश के शत्रुगण और हमारे भी शत्रु हैं, ये लोग क्या करेंगे, ब्रजभूमि पर आक्रमण कर देंगे। हम लोग जानते हैं मथुरा पर जरासंध ने कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार, और हर बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आता था जरासंध। कहां से आता था, मगध से, बिहार से, 23 अक्षौणी सेना लेकर आता था, और हर बार कृष्ण बलराम अपनी सेना लेकर नहीं जाते थे लड़ने के लिए जरासंध से, ये दोनों भाई निकल जाते थे कृष्ण बलराम, और जरासंध की सारी सेनाओं को आप वध कर देते थे, केवल अकेला जरासंध को छोड़ देते थे। ऐसा क्यों करते थे, जरासंध को भी मार सकते थे, किंतु भगवान कृष्ण आए थे धर्म संस्थापन करने के लिए, और इस संसार में ऐसे दुष्ट राजा और दुष्ट राजाओं की बहुत सारी सेना है और उनके पक्ष में रहने वाले लोग थे संसार में, और इन सबका वध करना बहुत आवश्यक था संसार में धर्म संस्थापन करने के लिए। तो भगवान कृष्ण इसलिए जरासंध को अकेला छोड़ देते थे अपमानित करके, कि अपमानित होकर जाएगा और प्रतिशोध लेने के लिए और क्रोधित होकर और सेनाओं का जुगाड़ करके फिर आएगा हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए, और हम यहीं बैठे मथुरा में बैठे बैठे ये सारे आसुरिक सेनाओं का हम वध करेंगे, ये कृष्ण की योजना थी। तो जरासंध जाता था हर बार अकेला, पैदल जाता था बिहार मथुरा से, और हर बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आता था और कृष्ण हर बार उसकी अवस्था इस प्रकार करते थे, वो अकेला फिर जाता था। 17 बार इस प्रकार किया। जब 18 बार आया तो भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया था, क्योंकि बार बार आक्रमण हो रहा था, मथुरावासी भयभीत तो हो रहे थे, तो इसलिए वो द्वारका चले गए मथुरावासियों के साथ लेकर। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मैं ब्रज में चला जाता, ब्रज में रहने लगता, तो ये जरासंध आता हर बार, और जरासंध अकेला नहीं आ रहा था, काल यवन भी आया था, तो ये सारे शत्रु आकर ब्रज पर आक्रमण करते। और ऐसे तो मथुरावासी भयभीत रहते थे, किंतु मथुरावासी कम से कम नगर में रहते हैं, किसी तरह वो सुरक्षित है, किंतु ब्रजवासी लोग क्या करेंगे? यदि ब्रज पर आक्रमण होगा तो ब्रजवासियों की सुरक्षा कैसे होगी? इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम ब्रज में इसलिए नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे शत्रु लोग सोचेंगे ये कृष्ण का अपना स्थान है ब्रज, तो इसके अपने लोगों को मार दो तो कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सोचकर लोग ब्रज पर आक्रमण करते शत्रु लोग, तो कृष्ण इसलिए ब्रज से दूर रहते थे, लोगों को ये जताने नहीं देते कि ब्रजवासी उनके अपने लोग हैं, उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण ब्रज में नहीं आ रहे थे। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि हम तुम लोगों से उदासीन इसलिए हो, यद्यपि मेरे हृदय में तुम लोगों के प्रति उसी प्रकार प्रेम भाव है जिस प्रकार तुम लोगों का मेरे प्रति है, किंतु मैं इसको प्रकट नहीं करता। तुम लोगों के प्रति मेरा जो प्रेम, उसको मैं प्रकट नहीं करता, इससे तुम लोगों के लिए विपत्ति आ सकती है, ब्रज पर आक्रमण हो सकता है। तो कृष्ण अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं, क्यों वो ब्रज में नहीं आए, या ब्रजवासी जो उनके विरह में तड़पते थे उनको सांत्वना देने के लिए कम से कम ब्रज में आना चाहिए था, इसलिए नहीं आए। जेबा स्त्री पुत्र धने करी राज्य आवरणे जदुगणेर संतोष लगिया तुमार जे प्रेम गुण करे आमा आकर्षण अनिमे आमा दिन दस दिश। तब ब्रजवासी और विशेष रूप से गोपियां भगवान कृष्ण को कभी कभी उलाहना देती हैं कि अभी तो आप विवाह भी कर चुके हैं, द्वारकापुरी में निवास करते हैं, विवाह कर चुके हैं, 16,108 रानियां हैं, और उन रानियों से 10-10 पुत्र भी हुए हैं, तो आप तो अपना परिवार लेकर बैठे हैं उधर, हम लोगों को गोपियों का क्यों स्मरण करेंगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो पुत्र स्त्री आदि धन संपत्ति है, राज्य है, ये सब मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे लिए नहीं है। मैं तो केवल यदुवंशियों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा हमने किया है। यदुवंशी और मेरे माता पिता, उनको संतुष्ट करने के लिए हमने किया है, किंतु मेरा जो प्रेम है ये तुम लोगों के प्रति है, इन लोगों के प्रति नहीं है। ये तो केवल कर्तव्य मानकर मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूं मथुरा और द्वारका में। तो तुम लोगों का जो प्रेम है वो मुझे सर्वाधिक आकर्षित करता है। भगवान कृष्ण स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि गोपियों का प्रेम उन्हें सर्वाधिक आकर्षित करता है, और कहते हैं कि तुम्हारा वो प्रेम इतना शक्तिशाली है, प्रबल है, कि और अधिक दिन नहीं, 8-10 दिन में हम आ ही जाएंगे ब्रज में, जबकि भगवान का 8-10 दिन बहुत होता है। भगवान 100 वर्ष तक ब्रज से बाहर रहे, प्रकाश रूप से, प्रकट रूप में। 100 वर्ष का विरह ब्रजवासियों को सहन करना पड़ा, और भगवान कह रहे हैं 8-10 दिन में आ जाएंगे। पुनः आसी वृंदावन ब्रजवधू तमासन बिलसिव रजनी दिवस, इसलिए और 8-10 दिन प्रतीक्षा करो, और 8-10 दिन में हम ब्रज में आ जाएंगे और तुम लोगों के साथ विहार करेंगे, तुम लोग चिंता मत करो, अब जीवन धारण करो हमारे लिए। एता तारे कही कृष्ण ब्रज जाई ते सतृष्ण, यही श्लोक पढ़ी सुनाइल, सही श्लोक सुनी राधा खंडिल सकल बाधा, कृष्ण प्राप्ते प्रतीति हईल। तो यह कहकर भगवान कृष्ण ने एक श्लोक कहा जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का श्लोक है, जो गोपियों को भगवान कृष्ण ने कहा था। तो उस श्लोक को सुनकर श्रीमती राधारानी की जो विरह व्यथा है वो दूर हो गई, और उनको ये विश्वास हो गया कि कृष्ण अतिशीघ्र ब्रज में लौट आएंगे। मई भक्ति भूतानं अमृत त्वाय कल्पते दिष्टा जदासी सिन मत स्नेहो भवतिनं मदापना। तो यही सब अर्थ प्रभु स्वरूप रसने रात्रि दिने घरे बसी करे आस्वादने। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में रात दिन स्वरूप दामोदर के साथ बैठकर ऐसे श्लोकों का अर्थ आस्वादन कर रहे थे, ऐसे भावों का कृष्ण और राधारानी के बीच जो भाव है, प्रेम भाव, इनका आस्वादन कर रहे थे, क्योंकि वो राधारानी के भाव में थे। नृत्य काले सही भावे अभिष्ट हैं, श्लोक पढ़ी नाचे जगन्नाथ मुख छाया। और जगन्नाथ के रथ के सामने जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे और जगन्नाथ के मुख की ओर देख रहे थे और नृत्य कर रहे थे, तो इस प्रकार के श्लोक पढ़कर चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट हो जाते थे। और नृत्य करते थे जगन्नाथ की ओर देखकर। स्वरूप गोस्वामी भाग्य नाजाय वर्णन प्रभुते अविष्ट जार काय वाक्यमान। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके भाग्य की प्रशंसा नहीं की जा सकती, कितने भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर वाक्य और मन में, अब उनका शरीर वाक्य और मन चैतन्य महाप्रभु में सदा सर्वदा आविष्ट था, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता सखी थे, जो श्रीमती राधारानी के साथ साथ ललिता सखी रहती थी, उसी प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी रात दिन सदा सर्वदा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, और उनको श्रीमद् भागवत के श्लोक पाठ करके उनको आस्वादन कराते थे, और उनका कंठस्वर बहुत सुंदर मधुर था स्वरूप दामोदर गोस्वामी का, अपने सुंदर कंठ से ये गाते थे, भगवान कृष्ण के लीलाओं का गान करते थे और चैतन्य महाप्रभु को सुख आस्वादन कराते थे। तो ठीक है, आज यही हम विश्राम देंगे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री श्री गौर निताय की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री श्री ललिता विशाखा देवी की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कुछ प्रश्न है? ठीक है, पूछिए। क्या
ये जो आपने कृष्ण प्रेम का वर्णन किया, ये कोई भी प्राप्त कर सकते या केवल ईश्वर ने ही ऐसा?
ये चैतन्य महाप्रभु का कलयुग के लिए विशेष वरदान है। हर कलयुग में भगवान के दूसरे अवतार आते हैं हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तन करने के लिए, क्योंकि कलयुग के लोगों का उद्धार के लिए हरिनाम ही एकमात्र मार्ग है। हरिनाम कीर्तन, जाप और कीर्तन। तो दूसरे कलयुगों में भगवान के दूसरे अवतार आते हैं हरिनाम प्रवर्तन करने के लिए, किंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, कि कोई भी अवतार हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन कर सकता है, किंतु मेरे बिना कोई ब्रज प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। तो कृष्ण जो ब्रज प्रेम के विषय है, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, जो राधा रानी के भाव को लेकर आते हैं, तो राधा रानी ब्रज प्रेम का आश्रय है। आश्रय और विषय में अंतर समझना चाहिए कि ब्रज प्रेम जिसमें आश्रय करता है, जिसमें ब्रज प्रेम का उदय होता है वो आश्रय है, और जिसके प्रति प्रेम किया जाता है वो विषय है, प्रेम का विषय। तो कृष्ण प्रेम का विषय है क्योंकि कृष्ण के प्रति ही प्रेम किया जाता है, और प्रेम का आश्रय कौन है? श्रीमती राधा रानी और भक्त जन है, ब्रज जन, ब्रज भक्त, ये प्रेम के आश्रय है। और जो उनके अनुगामी है, ब्रज जनों के अनुगामी, ये भी ब्रज प्रेम के आश्रय हो सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण जो राधा भाव को ग्रहण किए हुए थे, तो ये हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ब्रज प्रेम प्रदान कर रहे हैं इस कलयुग में। हर कलयुग के लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से इस ब्रज प्रेम को प्राप्त होने के लिए, इसलिए इस कलयुग को धन्य कलि कहा गया है। क्योंकि इस कलयुग के पहले जो द्वापर युग आया था, उस द्वापर में ब्रजनंदन कृष्ण आविर्भूत हुए थे। हर द्वापर में ब्रजनंदन कृष्ण आविर्भूत नहीं होते, भगवान के दूसरे अवतार आते हैं, उनका नाम कृष्ण होता है किंतु वो वासुदेव कृष्ण, ब्रजनंदन कृष्ण अवतरित तो नहीं होते। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ब्रजनंदन कृष्ण का आविर्भाव होता है, और वो इस द्वापर युग में हुआ था। और जिस द्वापर में ब्रजनंदन कृष्ण आविर्भूत होते हैं, उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें ब्रजनंदन कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से इस ब्रज प्रेम को प्रदान करते हैं। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं जो इस कलयुग में जन्म ग्रहण किए हैं और हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में हम अंश ग्रहण कर रहे हैं। तो ये चैतन्य प्रभु महाप्रभु का वरदान है कि जो कोई भी इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में अंश ग्रहण करता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आता है, तो वो भी ब्रज प्रेम को प्राप्त हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रेम का जो भंडार है उसको खोल दिया है कलयुग के लोगों के लिए। आप केवल हमें उस भंडार से प्रेम को, जितना प्रेम ले सकते हैं ले लीजिए, कोई कमी नहीं है। नित्यानंद प्रभु इस प्रेम भंडार के भंडारी हैं, और नित्यानंद प्रभु परम उदार और परम कारुणिक है, उन्होंने खोल दिया है, चाबी खोल दी भंडार घर की चाबी, वो लुटा रहे हैं प्रेम, जितना ले सके तो ले लीजिए, ये हमारा सौभाग्य। और यदि इस सौभाग्य से हम वंचित हो गए तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और कोई प्रश्न?
आपने रात को बताया था कि विष्णु भगवान ही खाली पुरुष
स्त्रियां पुरुष का अर्थ क्या है? कल हमने कहा था पुरुष का अर्थ क्या होता है? हैं? पुरुष का अर्थ सर्वशक्तिमान है, भोक्ता। तो कृष्ण परम भोक्ता है, इसलिए वो परम पुरुष है। पुरुष का अभिमान भोक्ता में है, भोग करने में। जबकि हम पुरुष नहीं है किंतु भक्ता का अभिमान आ जाता है, यही तो हमारा दुख का कारण है। हम भगवान की प्रकृति, हमारे जीव कौन है? भगवान क्या है? जीव शक्ति है ना, तो शक्ति स्त्री है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है और तटस्थ शक्ति है। अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधारानी है, बहिरंग शक्ति माया देवी है, तटस्थ शक्ति सारे जीव है। तो जीव जब शक्ति है तो शक्ति का अर्थ क्या है? शक्तिमान की सेवा करना। और शक्ति जब स्वयं भोग करने के लिए चाहेगी तो वहां अनर्थ हो जाएगा कि हम पुरुष नहीं, हम शक्ति हैं भगवान की, भगवान की भोग्य वस्तु है, भगवान को भोग प्रदान करने के लिए हमारी सृष्टि है। किंतु हम भगवान बनकर बैठे हैं, हम चाहते हैं भोग करने के लिए, ही तो हमारा दुख का कारण कि हम भोग नहीं कर सकते। हम चाहने पर भी, हम लोग चाह रहे हैं संसार में भोग करने के लिए, कर पा रहे हैं? कितना भोग करते हैं आप? ये संसार भोग के लिए नहीं है, दुख के लिए, दुखालय। हम जिसको भोग मानते हैं वो क्षणिक भोग, उसमें आनंद थोड़ा लेते हैं, किंतु उसके साथ साथ अनंत दुख पीछे आता है। क्योंकि हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता अभिमान को लेकर बैठे हैं पुरुष बन करके, जबकि हम स्त्री है, शक्ति है भगवान की। भगवान को भोग प्रदान करना ये हमारा कर्तव्य है, उसी में ही हम आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। हम लोग वास्तविक आनंद क्या है नहीं जानते। हम सोचते हैं कि भौतिक संसार में जो मैथुन सुख का आनंद, ये सर्वश्रेष्ठ आनंद है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये मैथुन सुख नहीं है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को या गोपियों के साथ लीलाओं को। राधा कृष्ण की लीलाएं या गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं में कोई मैथुन सुख नहीं है, इसलिए उसको दिव्य कहा गया है। क्योंकि मैथुन सुख तो तुच्छ है भौतिक संसार का, जो मैथुन सुख है यह तुच्छ सुख है। यन मैथुनादि गृह मेदि सुखं तुच्छम कंडु यनेन करयोर इव दुख दुखम। ये मैथुन सुख केवल दुख देने के लिए है। तो संसार में मैथुन सुख के लिए ही हम इतना दुख प्राप्त हो रहे हैं। आप मैथुन सुख को त्याग दीजिए, आपका दुख भी दूर हो जाएगा, आप सभी ब्रह्मचारी बन जाए, आपका दुख दूर हो जाएगा। आनंद में आप भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करते रहे, आप एक घर संसार में इसलिए दुख प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि मैथुन सुख की जो इच्छा है, कामना है, उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए तो दुख को वरण करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। चाहे कितने भी दुख हैं आने दो, हमें थोड़ा मैथुन सुख चाहिए। तो यही तो दुख का कारण है संसार। किंतु आध्यात्मिक जगत में ये मैथुन सुख नहीं है, ये जान लीजिए। इसलिए वहां जो आनंद है वो दिव्य आनंद है, और उस आनंद में कोई अंत नहीं होता। दिव्य आनंद में कोई अंत नहीं है। भौतिक सुख में आनंद का अंत है, किंतु दिव्य आनंद में कोई अंत नहीं है। भगवान के धाम में जो दिव्य आनंद, भगवान का दर्शन, उनके साथ क्रीड़ा करना, नृत्य करना, गीत गाना, ये दिव्य आनंद है, इसमें कोई दुख का नाम ही नहीं। इसलिए उस दिव्य आनंद के बारे में हम नहीं जानते, अतः हम मैथुन सुख को सबसे बड़ा सुख मान रहे हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण, ये हमारी अज्ञानता। और जो व्यक्ति मैथुन सुख धारणा से मुक्त नहीं है वो भगवत धाम नहीं जा सकता, ये मान लीजिए। जब तक हम मैथुन सुख धारणा से मुक्त नहीं होंगे तब तक भगवान के धाम में हम जा नहीं सकते। यदि हमें प्रवेश का अधिकार दे दिया गया तो हम वहां जाके अनर्थ उत्पन्न कर देंगे भगवान के धाम में, सब गड़बड़ हो जाएगा भगवान के धाम में। इसलिए हमें प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं है जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होंगे, भोग की कामना से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। हरे कृष्ण। जय श्री ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।
दो मिनट बैठिए सब लोग।